ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के सभी स्कूलों में मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया। नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कनेक्ट ऐप को अपडेट किया। राष्ट्रपति भवन उपहार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रपतियों को भेंट की गई उपहार वस्तुओं की नीलामी करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली के पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने आज नगर निगम के सभी स्कूलों में मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया। इस पीटीएम में छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी उत्साह के साथ शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी, कालकाजी और नगर निगम प्राथमिक कोएड विद्यालय ईस्ट ऑफ कैलाश में शामिल होकर बच्चों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेगा पीटीएम अभिभावकों और शिक्षकों को एक साथ लाता है, जो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद करता है। श्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे केवल किसी परिवार का भविष्य मात्र नहीं होते बल्कि देश का भी भविष्य है। उन्होंने कहा कि बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब शिक्षक और अभिभावक मिलकर उनकी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। वहीं दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओब्रॉय ने भी प्रसाद नगर स्थित निगम विद्यालय में मेगा पीटीएम में शामिल होकर अभिभावकों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री ओब्रॉय ने कहा कि स्कूलों में अभिभावकों की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अभिभावकों का जागरूक होना जरूरी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आज हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा ऊर्जा की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री असीम गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वंचित लोगों को सम्मानित किया गया। श्री गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे हर एक महिला को उनके मूल अधिकारों का अनुभव करने दें। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में शिक्षा हो या खेल, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में चल रहा लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रहा है। 16 दिवसीय ये उत्सव केंद्र सरकार के 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा है। ये मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सफलता की कहानियों के साथ साथ पूरे देश से शिल्प उत्पादों, कला और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को बढ़ावा देने की पहल है। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन इस महीने की 16 तारीख को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने किया था और ये इस महीने के अंत तक चलेगा। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक डॉ आभा रानी सिंह ने कहा कि महोत्सव भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न कारीगरों की 162 कला, शिल्प और देसी उत्पादों के सभी स्टॉल्स की मेजबानी कर रहा है। डॉ सिंह ने कहा कि कारीगरों के लिए दैनिक कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है, ताकि उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर विपणन और अपने कौशल प्रदर्शन करने में मदद मिल सके। नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कनेक्ट ऐप को अपडेट किया है। इस ऐप में यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट बुकिंग के साथ साथ कई अन्य नए फीचर भी जोड़े गए हैं। इसके माध्यम से यात्री टिकट बुक करने के साथ ही पिछली यात्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐप Google Play और Apple Store दोनों पर उपलब्ध है। एक रिपोर्ट।
एनसीआरटीसी ने ऐप के जरिए लाइव एंड ट्रैकिंग सुविधा भी शुरू की है जो यात्री को उसके स्टेशन पर ट्रेनों की वास्तविक स्थिति को दर्शाएगी। इस ऐप पर सप्ताह के सभी दिनों में ट्रेन सेवा शुरू होने और समाप्त होने की पूरी समय सारणी के साथ ही स्टेशन के कंट्रोल रूम का कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध है। आरआरटीसी कनेक्ट ऐप में फीडर बस सर्विस के साथ ही स्टेशनों पर बाइक, ऑटो और कैब बुक करने के लिए रैपिडो ऐप का लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा ऐप में यात्रियों को स्टेशन फैसिलिटीज का ऑप्शन भी दिया गया है जिस पर का पानी, वॉशरूम, स्टेशन के अलग अलग प्रवेश निकास द्वारों, पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ ही यात्रियों को खोए पाए सामान की जानकारी, किसी भी अन्य सहायता या शिकायत के लिए फीचर दिए गए हैं। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान मूल्यांकन वर्ष के लिए 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न आईटीआर भरे गए हैं। ये पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने आज कहा कि सिर्फ 28 लाख से अधिक आईटीआर भरे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति भवन ई उपहार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी करेगा। ये पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 जुलाई को उनके राष्ट्रपति पद पर 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया गया था। गौरतलब है कि पहले चरण में करीब 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी। बोली अवधि समाप्त होने के बाद आइटम उच्चतम बोली लगाने वालों को वितरित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट upahar.rashtrapatibhavan.gov.in पर अपनी बोली लगा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल नागरिक जुड़ाव बढ़ाना है बल्कि नेक काम का समर्थन करना भी है। नीलामी से प्राप्त सारी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद हैं। ये बैठक लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट पेश होने के कुछ दिनों बाद हो रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, राज्यों से प्रतिक्रिया और अन्य मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया। मंत्रालय की स्थापना 27 जुलाई 2006 में हुई थी। एक रिपोर्ट।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लगभग 2 दशक पूरे कर लिए हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद इस वर्ष स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने कहा कि इन 18 वर्षों में विभाग को अपनी कई उपलब्धियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि विभाग को आगे की चुनौतियों, विशेषकर खाद्य, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रालय ने भारत में चक्रवात चेतावनी पर मानक संचालन प्रक्रिया और उच्च प्रभाव वाले मौसम की घटनाओं की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए कई पुस्तकों का लोकार्पण किया। मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के एनोम्यूरन केकड़ों की टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक शीर्षक से एक कैटलॉग और 14वीं भारतीय आर्थिक अभियान 2023-24 पर एक समेकित रिपोर्ट भी जारी की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
ग्राहकों को राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ ने टमाटर की खुदरा बिक्री को 60 रुपए प्रति किलोग्राम करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 29 जुलाई से दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर होगी। एनसीसीएफ ने बताया कि कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, हेड ऑफिस, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट, मंडी हाउस, कैलाश कॉलोनी, आईटीओ साउथ एक्सटेंशन, मोतीनगर, द्वारका, नोएडा सेक्टर 14 और सेक्टर 76, रोहिणी और गुरुग्राम सहित कई स्थानों पर टमाटर की खुदरा बिक्री 60 रुपए प्रति किलो होगी। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने डॉ कलाम की तस्वीर पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री सचदेवा ने कहा कि स्वर्गीय डॉ कलाम ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है।
डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। पद्म भूषण उन्हें मिला था। एक बेहतरीन साइंटिस्ट होने के साथ एक बहुत बढ़िया ह्यूमन बींग, कैसे पूरे समाज को साथ रहना, कैसे बच्चों को शिक्षा देना, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना और उनको मोटिवेट करना, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने अपने जीवन में सिखाया है। और आज हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात की प्रण भी लिया है कि हम सब मिलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के बताए हुए रास्ते पर चलें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव ने दिल्ली के पूर्व मेयर श्री फरहाद सूरी को दिल्ली नगर निगम का प्रभारी नियुक्त किया है। श्री यादव ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों द्वारा प्रखर रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए फरहाद सूरी को निगम का प्रभारी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि वे अपने असाधारण प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी को भारत का गौरव बताया और आशा प्रकट की कि वे खेल भावना को मूर्त रूप देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बल का अटल समर्पण और निस्वार्थ सेवा सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान बहादुरी और प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन के एक सहायक उपनिरीक्षक एएसआई को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के आरोपी सहायक उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता से उसके जब्त वाहन को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी एएसआई को रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पौधारोपण करने पर उनका आभार व्यक्त किया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एएसआईटीए पार्क में आज उपराष्ट्रपति ने अपनी मां केसरी देवी के सम्मान में एक पौधा लगाया। राजधानी में आज ज्यादातर इलाकों में बादल छाये रहने के साथ ही कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के सभी स्कूलों में मेगा अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया। नमो भारत ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्ट ऐप को अपडेट किया। राष्ट्रपति भवन ई उपहार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रपतियों को भेंट की गई उपहार वस्तुओं की नीलामी करेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली के पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।